शन्नो मित्रावरुणा शन्नो भक्वर्यमा शन्नेन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु मावतु वक्तारं मावतु ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल सार्वभौम धर्म की व्याख्या की गई थी, सामान्य व्याख्या थी वो। एक सामान्य व्याख्या होती है, विशेष व्याख्या होती है। तो अब विशेष व्याख्या वर्णन करेंगे मानव धर्म की या संसार के सब मनुष्यों के धर्म की। पहला धर्म बतलाया था अहिंसा। अब अहिंसा हमारे योगियों की तो ठीक होती है, अब राजाओं की हिंसा में क्या अंतर होगा और योगियों में क्या अंतर होगा? वास्तविक में अगर पूर्ण रूप से इन धर्मों का पालन किया जाए तो राजा भी हमारे समान ही योगी बन सकते हैं। और जैसे हमारे लोगों का कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं, स्नेह और प्यार की भावना से सब रहते हैं, अगर ऐसे ही सारे संसार के विश्व के लोग स्नेह प्यार और धर्म का आचरण करते रहे तो लड़ाई झगड़े वगैरह युद्ध भी खत्म हो जाए। तो इसलिए राजा भी अगर इस धर्म का पालन करेंगे अहिंसा रूप धर्म का तो उनका भी कोई शत्रु नहीं रहे। तो जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले होते हैं मन से वचन से और कर्म से, मन में भी किसी के प्रति बैर की भावना ना हो, दुश्मनी की भावना ना हो, उसको दुख पहुंचाने की भावना ना हो, उसको क्लेश पहुंचाने की भावना ना हो, उसके मारने की भावना ना हो, उसके विनाश की भावना ना हो, वह मन के अंदर ऐसा विचार भी ना आए, तो ये सबसे उत्तम अहिंसा योगी की कहलाती है मानसिक अहिंसा। क्योंकि जब मन में कोई विचार ही नहीं आएगा तो वाणी भी कर्म नहीं करेगी और फिर शरीर से भी वैसा हिंसा का कर्म नहीं होगा। तो इसलिए पहला धर्म जो है वो मन का धर्म है, अहिंसा रूप धर्म। किसी भी प्राणी के प्रति वैर भावना ना होना, मारने की भावना ना होना, द्वेष की भावना हमारे मन में ना, स्नेह और प्यार वात्सल्य भाव आर्द्रता नम्रता कोमलता सरलता हृदय की पवित्रता, ऐसी भावना प्रत्येक मनुष्य के अंदर हो जाए तो संसार के सब लड़ाई झगड़े हिंसा आदि सब कर्म खत्म हो जाते हैं। कश्मीर देश में इसका नाम पहले केके देश था, केके से कश्मीर बना। किसी टाइम में हजारों वर्ष पहले उपनिषद काल में अश्वपति नाम के एक राजा यहां होते थे। तो एक बार कुछ मुनि, वो बहुत ऊंचे दर्जे के ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी माने जाते थे, तो उनके पास शिक्षा के लिए पांच महात्मा मिलकर के आए कि हम आप अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दो। तो राजा के घर में महात्मा आए, उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार किया। तो महात्मा कहने लगे कि राजन हम आपका अन्न नहीं खाएंगे, क्योंकि राजा का अन्न अच्छा नहीं होता, अच्छी कमाई नहीं होती है। तो इसलिए अनेक प्रकार से बलात्कारों से राजा धन संग्रह करता है, प्रजा को पीड़ित करके शोषण कर करके धन को संग्रह करता है, हम आपका अन्न नहीं खाएं। तो राजा कहने लगा भाई तुम अन्न तो नहीं खाना चाहते पर मेरे से विद्या क्यों लेना चाहते हो? कि विद्या तो तुम्हारे अंतःकरण की पवित्र चीज है ना। और ये बाहर की चीज है, हमारे भी अंत्यकरण पवित्र है, आपका भी अंत्यकरण पवित्र है, अंत्यकरण से अंत्यकरण में विद्या ले ली है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। पर क्योंकि बुरा न जो होता है उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। एक बार एक महात्मा एक राजगृह में गया भिक्षा लेने के लिए, तो रानी का कुछ भूषण वहां रखा हुआ था। पता नहीं उसके मन में क्यों चोरी का भाव आया भिक्षा लेकर के, और उस जाले में से एक हार उठाकर चला गया। चला गया तो अब दूसरे दिन फिर वो महात्मा सोचने लगा कि देखो उसने तो मेरे ऊपर इतना उपकार किया था कि मेरे प्राण बचाने के लिए मुझे अन्न की भिक्षा दी थी, पर मैं ऐसा नीच और पाप आत्मा हूं उस बेचारी का भूषण ही मैं उठा लाया, तो मैंने ये पाप कर्म किया। दूसरे दिन गया जाकर के उस रानी के चरण पकड़ लिए इस महात्मा ने, और वो भूषण जो था उसके चरणों में रख दिया। तो रानी पूछने लगी कि महात्मन क्या बात है, समझ में नहीं आई मुझे तो तुम्हारी ये फिलॉसफी कि माता जी कल मैं आपके यहां भिक्षा लेने आया था और मेरे मन के अंदर पता नहीं क्यों ऐसी भावना पैदा हुई, मैंने आपका हार चुरा लिया यहां से और आज उसको मैं लेकर के आया हूं। मेरा हृदय नहीं मानता कि जिसका मैंने अन्न खाया हो अर्थस्य पुरुषो दासा, अर्थ का पुरुष दास होता है, मैं बहुत कृतघ्न महात्मा हूं, बहुत पाप आत्मा हूं, पता नहीं मुझे कल किसी का आपसे पहले बुरा अन्न मिला होगा। तो उस रानी ने बहुत प्रसन्न हुई महात्मा के विचार सोच करके, तो अति कल तुमने भिक्षा मेरे से पहले कहाँ की थी, कि कहने लगे कि यहाँ तुम्हारे खजानची के यहाँ की थी, तो वो जरूर खजाने से चोरी करता होगा क्योंकि मैंने चोरी का अन्न खाया और मेरे अंदर मन के अंदर भावना चोरी की पैदा हुई, तो जैसा जैसा अन्न खाता वैसा वैसा ही मन हो जाता है। अब रानी ने इंक्वायरी शुरू कर दी, आखिर को वो खजाने से बहुत धन चुराता था खजानची जो था, तो वो ये तो हुआ दृष्टांत। तो दृष्टांत इसका ये है कि आदमी जैसा जैसा अन्न या धन खाता है उसकी बुद्धि भी विचार भी वैसे बन जाया करता है। अब जब उसका अंतःकरण पवित्र हुआ, रानी का अन्न अच्छा था घर का, उस खाया तो पवित्र भावना चुराया हुआ उसका भूषण वापिस कर पाया। सो ये तो हुआ एक दृष्टांत इसका। दूसरा यहाँ के राजा का, तो वो राजा महात्माओं से कहता है कि महाराज नमेस्ते नो जनपदे देशे न मध्ये न कदर्यपा नानाहुता अग्नि महंतिम सौरणी सौरणी कुताहा सौरी कुता। ये महात्माओं न मेस्ते नो जनपदे देशे, मेरे इस राज्य के अंदर कोई चोर और डाकू नहीं है। न मेस्ते जनपदे देशे, ये जो जनपद देश है मेरा केके देश कश्मीर, इसमें कोई चोर और डाकू नहीं बसता है, कोई चोरी करने वाला नहीं किसी के धन को हरण नहीं। और मैं भी जो शास्त्रों का विधान है जिसको प्रजा के लोग भी स्वीकार करते, मैं पूछ लेता हूं क्योंकि दसवां अंश राज्य की रक्षा के उनसे लिया जाता है, अगर किसी के पास नहीं होता तो मैं माफ भी कर देता हूं, प्रसन्नता से जो दे जाता है कानून विधान बना हुआ है वह मैं ले लेता और उसको राज्य की सेवा में लगा। और मैं भी राज्य का अन्न नहीं खाता हूं, मेरी पत्नी हाथ के कसीदे का काम करती है, उससे आमदनी होती है, उसको हम दोनों खाते हैं। तो न मैं ऐसे न जनपदे देशे न मत्ते न कदर्यपा, तो इसलिए यहाँ कोई मांस और शराब आदि भी सेवन करने वाला नहीं। कोई शराबी नहीं, कोई कबाबी नहीं, कदरी ये कहते जुआ खेलने वाले, और जुआ खेलने वाला भी नहीं होता। तीन व्यसन होते हैं, एक जुआ, एक परस्त्री गमन और एक शराब, ये तीन बड़े भारी व्यसन कहलाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के व्यसन मेरे राज्य में नहीं है, मेरे में नाना हुता अग्नि महंती नित्य। सब लोग यज्ञ आदि कर्म करते हैं, संध्या उपासना पूजा पाठ करते हैं, दस प्रकार के धर्मों का आचरण करते हैं। नाना हुता अग्नि महंती सौरणी सौरी, मेरे देश में कोई व्यभिचारिणी स्त्री भी नहीं है और कोई दुराचारी व्यभिचारी पुरुष भी नहीं है। तो ऐसा मेरा देश है, पवित्र है, फिर तुम मेरा अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते हो? लगभग 52 वर्ष की आयु तक साधना करता रहा, फिर मैं अपनी साधना बंद करके ये कार्य क्षेत्र में खुला हो गया, क्लासे विलासे लगानी शुरू कर दी। पहले ये हुआ करता, दो चार को बैठा लिया करता गंगा के किनारे और प्रभावित कर दिया करता था, समाधि लगा जैसे मर्जी कर दिया करता था, क्योंकि मैं भी साधना करता था, मनोबल भी बड़ा बढ़ा हुआ था। अब दो चार एक आध व्यक्ति आता था और हमेशा नहीं, कभी कभी आया करते थे। ये हरिद्वार में जब मैं होता था, हिमालय में तो कोई नहीं आता था गंगोत्री आदि, तो तब ऐसी स्थिति थी वह मानसिक। मुझे एक व्यक्ति ने अमृतसर के ने घर से जब मैं भाग चला था तो अमृतसर में कहा कि मैं आजीवन, मेरे पास पैसा अच्छा है कमाई का, आजीवन आपके खाने का कपड़े का और पुस्तकों का खर्च दिया करूंगा, आप निर्द्वंद होकर के कहीं रहो, कहीं साथ ना करो, क्योंकि आप अच्छे काम में लगेंगे और मुझे आशा है कि देश के लिए तुम भविष्य में बहुत अच्छे साबित होगे, तो इसलिए मेरा पैसा तुम्हारे निमित्त है, जितना तुम चाहो। तो मैं उनका पैसा मुझे आता था, मैं और किसी का इधर उधर नहीं लिया, खाया करता था, अपना रोटी बना ली एक वक्त, शाम को आज से दूध पी लिया, ये मेरी खुराक थी 24 घंटे में, चार रोटी अपने आप बना लिया करता था, 52 साल की उम्र तक बनाता रहा मैं अपने आप, फिर बाद में नौकरों पर रखने से। तो ऐसा कुछ सात्विक मन रहता था, ऐसी पवित्र विज्ञान की धाराएं अब भी होती है, उदय अब भी नहीं, अब तो शायद उनसे बहुत ऊपर सा आ गया हूं, पर अब कमाई अच्छी, अब कमाई अच्छी नहीं खाता, पर अब उसका प्रभाव भी बुरा नहीं पड़ता। अब ये जो तुम्हारे आश्रम है इनमें हेरा फेरी पैसे की बहुत करनी पड़ती है, अब मुझे पहले चोरों से डर नहीं होता था, अब पैसा वैसा रखा हो तो उसको ताले कुंडी जंदरे सब बड़ा बंदोबस्त करना पड़ता है, किसी के हवाले या बैंक में रखना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है आश्रम। जब तक मेरा जीवन अपना रहा, मेरे पैसे खुले पड़े रहते थे कुटिया में, कभी कुछ नहीं, कुछ जंदरा कुंडी लगाया करता था, कुत्ते कुत्ते ना जाए, नहीं ऐसे चोर भी आते थे वो भी नहीं कभी ले जाते। तो ऐसी स्थिति गोया 52 साल की उम्र तक पूरा यम नियम का पालन करता रहा निर्द्वंद होकर। बड़ी शक्तियां थी उस वक्त, मनोबल आदि की सारी बातें थी, अब भी ये बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो अन्न का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, साधना की अवस्था में अब तो मेरे ऊपर नहीं पड़ता, अब तो तुम किसी का भी, मुझे चोरों का भी खिला दो कुछ नहीं गिलानी होती, किसी साधु के भी खिला दो कुछ गिलानी नहीं, ईसाई के घर खा लो, मुसलमान के घर खा लो, किसी कोई, अब उस बात से ऊंचे उठ गया समझो, या वो भावना ही मन से जाती रही, क्योंकि भावना का ही प्रभाव मन के ऊपर पड़ा करता है। तो ऐसी भावना हो गई है अब वो वैसा प्रभाव नहीं पड़ता है, अब विदेशों में इन सब के घरों में खाता रहा सब, अब भी खा लेता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि साधना की जो अवस्था होती है ये बड़ी कोमल सी, बड़ी नरम सी, बड़ी सुसज्जित सी होती है। तो इस अवस्था में इन यम नियमों का पालन करते हुए अन्न आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छी पवित्र कमाई हो, चोरी डाके आदि की बुरी पाप आदि कर्मों से कमाई नहीं हो, तो फिर योग जल्दी सिद्ध होता है। अहिंसा धर्म का पालन योगी करता ठीक रूप में, उसका कोई दुश्मन शत्रु नहीं रहता है, पशु पक्षी आदि भी उससे स्नेह और प्यार करने लगा करते हैं। जंगल के बड़े बड़े खूंखार हाथी शेर आदि भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं रखते। मैं रुद्र प्रयाग में रहा करता था हिमालय में, एक महात्मा वहां बहुत साल से एक पत्थर के नीचे गुफा में साधना किया करते थे। वहां एक छोटा सा तालाब था उस महात्मा के पास, तो मैं भी विचर रहा था हिमालय में महात्माओं की तलाश में। उस महात्मा के पास में जाकर के रात को रहा, तो उसने एक गुफा सी बतला दी। खाने को तो उसके पास कुछ था नहीं, वो तो जंगल की जड़ी बूटियां लेके खा लिया कर रहा था। मेरे पास कुछ था, सत्तू वत्तू बांधा हुआ था मैंने, तो मैंने कहा महात्मा जी ये भी ले लो कुछ, नहीं देता मैं तो। आज आप दे दोगे कल कौन लाएगा, मुझे खराब आदत पड़ जाएगी, तुम्हारे लिए मुबारक हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं तो जंगल का घास फूस खा करके गुजारा कर लेता। सवेरे दूसरे दिन कोई 10-11 बजे, सर्दी बहुत थी वहां, मैं स्नान करने जाना था उस तालाब के ऊपर। एक शेर आ गया वहां से सामने से, और वो मुझे देख करके खूब चिल्लाने लगा जैसे मेरे ऊपर हमला करना चाहता हो। वो महात्मा बाहर निकल करके आ गया, तो उसको कहता बस बेटा शांत हो जाओ, शांत हो, चलो ब्रह्मचारी जी आपका काम हो गया। अखा महाराज हो गया, वो ले आया कुटिया में। मैं कह ये बाघ शेर आपने पाला हुआ है? अक नहीं, यहाँ ये भी पानी पीने आता है, मैं भी इससे पानी ले लेता हूँ, मैं भी इसको कुछ नहीं कहता, ये भी मुझे कुछ नहीं कहता। मैं क्या आज मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा था कि तुम्हारे अंदर पूरा अहिंसा धर्म नहीं आया? मैं क्या वो कैसे? वो ऐसे कि आपने एक बड़ी बारी बल्लम रखी हुई है, आपको ये भी अभिमान है कि ये हमला करेगा तो इसको मैं मुकाबला भी कर लूंगा और इसको पछाड़ने की भी कोशिश करूंगा, है नहीं ये भावना? मैं क्या है? तो मैंने वो डंडा पंडा तोड़ करके उसके पास ही फेंक दिया, मैं नहीं रखूंगा। तो मैं उसके पास 20 दिन रहा, तो फिर वो शेर पानी पीने आता रहा, मैं भी नहाने जाता था, कुछ नहीं कहता था। सो कहने का तात्पर्य ये है कि मन का मन साक्षी होता स्वाभाविक ही। जैसे जैसे मेरे अंदर आपके प्रति भावना होगी द्वेष की राग की, मैं आपसे राग और स्नेह प्यार करूंगा, आपका हृदय भी मेरे लिए उमड़ आएगा। मैं आपसे द्वेष की भावना करूंगा, नफरत की भावना करूंगा, घृणा की भावना, आपके मन के अंदर भी वो भावना, क्योंकि मन का मन साक्षी होता है। तो इसलिए योगी को तो पूरा अहिंसावादी होना चाहिए, उसका कोई भी शत्रु कोई भी दुश्मन नहीं रहता संसार के अंदर, कोई उस पर आक्रमण नहीं करता, कोई उस पर हमला नहीं करता। जब तक हिंसा की भावना मन के अंदर रहेगी तब तक उसके सभी द्वेषी बने रहेंगे।